आपके कहने का मतलब ये है कि यदि हम महामंत्र का जाप करें तो सब कुछ मंत्र ही कर देगा, हमको मन को शांत करने के और उपाय क्यों करना चाहिए? महाराज जी ने तो ये बात वाणी में कही है, कलह कलेश सब दूर होए, पाए ज्ञान तत् योग, मंगत तत् अक्षर नित गाइए, प्रभु दर्शन होए संयोग। इसका मतलब इस महामंत्र के जाप से सारे मन के कलह कलेश खत्म हो जाएंगे। कलह कलेश खत्म होने का मतलब ये है कि मन के अंदर जो संकल्प विकल्प उठ रहे हैं वो शांत हो जाएंगे और उसी स्थिति में आपको उस ज्ञान तत्व की प्राप्ति होगी या ईश्वर की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके साथ साथ सारी वाणी, सारा समता विलास, इसमें और उपाय भी तो बताए हैं। हमारे मन में सैकड़ों जन्मों के संस्कार भरे पड़े हुए हैं और वो सारे संस्कार हमारी वासना के कारण, हमारी इच्छाओं के कारण, हमारे कर्तापन के कारण बनते हैं। जो कुछ भी कर्म मैं इच्छा करके करता हूं उसका संस्कार मन में बनता ही है और मंत्र का जाप उन संस्कारों को धीरे धीरे काटता है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं चल रही हैं आपकी, संस्कार बन भी रहे हैं और संस्कार कट भी रहे हैं। यदि आप महामंत्र का जाप कर रहे हो तो संस्कार कट भी रहे हैं, या पूर्ण गुरु से प्राप्त कोई भी साधना कर रहे हो तो संस्कार कटेंगे भी आपके, लेकिन इधर जो कर्तापन आपके अंदर है, मैं देह हूं, इस भाव से सारा जीवन व्यतीत करते हो, कर्म क्योंकि देह से होते हैं इसलिए आपके अंदर स्वाभाविक ये भाव बनता ही है कि मैं करता हूं, उसके संस्कार मन के अंदर बनेंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। सत्पुरुष इसीलिए आपको सबसे पहले संयम की बात सिखाते हैं कि आपका जो ये संसार में बिगड़ा जीवन है, जिसको हम भोगवादी जीवन कह देते हैं, ये आपके अंदर पांच विकारों की वृद्धि करता है, जिसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहा गया। और ये पांच विकार के संस्कार जब मन के अंदर तैयार होते हैं तो इससे मन की बेचैनी बढ़ती है। इधर तो आप महामंत्र का जाप करते रहे, उसका इलाज करते रहे, उधर इस रोग को अज्ञानता के कारण बढ़ाते रहे, तो आप कहाँ पहुंचोगे? मंत्र क्या क्या करेगा आपके लिए? तो सारी बात जो महाराज जी ने कही है, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरण, पांच नियम भी तो साथ में बताए। सिमरन के साथ साथ चार बातें और भी तो है, इसीलिए ये पूरा विज्ञान समझना ही पड़ता है। केवल मंत्र जाप से काम नहीं बन सकता। बात बिल्कुल ठीक है कि मंत्र आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा, साथ साथ तो वाणी करिए, त्रियोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दाता, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार, उसका अपार कल्याण होगा। सर्व सिद्धि दाता रहे, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा, अर्थात वासना ही तेरी खत्म हो जाएगी, तो मंत्र तो ये काम करेगा। लेकिन सवाल ये है कि आप यदि दवा खाते रहोगे, परहेज करोगे नहीं, तो परहेज का अपना रोल है, दवा का अपना रोल है। दवा जल्दी काम करे, जल्दी स्वस्थ करे, उसके लिए परहेज भी तो जरूरी है। जो सांसारिक जीवन है इसकी शुद्धता लाजमी है। यदि किसी रोगी का लक्ष्य है मेरा रोग ठीक होना चाहिए, उस लक्ष्य को लेकर चल रहा है और रोग के कारण वो बड़ा परेशान है, तो लोगी को इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि भाई जिस कारण से ये लोग बढ़ेगा उस कारण को तो मैं कम से कम दूर करूं। किसी को लूज मोशंस हो रहे हैं और उसको उड़द की दाल खाने से जो है वो लूज मोशन उसके बढ़ रहे हैं, तो उड़द की दाल खाना तो बंद करनी चाहिए उसको, या दवाई खाता रहेगा और बदपरहेजी वैसी चलती रहेगी। हम लोगों की हालत यही होती है संसार में कि दैनिक जीवन हमारा वही सांसारिक निश्चय के साथ चलता रहता है, और इधर हम सिमरन भी करते रहते हैं और ईश्वर प्राप्ति की कोशिश भी करते रहते हैं। जब 10-20 साल निकल जाते हैं तब देखते हैं कि हमारी मन की बेचैनी तो वैसी की वैसी बनी हुई है। फिर दोष जो है वो मंत्र में ही निकालने लगते हैं, या फिर गुरु में निकालने लगते हैं, या उसकी तालीम में निकालने लगते हैं। बात पूरी पूरी हमारी समझ में आती है। इसीलिए सबसे जो पहली बात है वो है हमारा जो वृत्ति संसार के भोग में बनी हुई है, ये जो संसार के भोग हैं और ये देह करके जो जीवन है, इसमें एक निश्चय है कि जितना मैं पुरुषार्थ संसार में पैसा कमाने के लिए, संपत्ति इकट्ठी करने के लिए और उसके द्वारा भोग विलास का जो की जो सामग्री है उसको खरीदने के लिए यदि मैं सक्षम हूँ तो मैं सुखी जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। यही तो निश्चय है, सारे संसारियों का यही निश्चय है कि मेरा सुखी जीवन हो जाए। लेकिन सत्पुरुष कहते हैं कि सुखिया कोई न देखिया जो आया इस संसार। वो निर्णय कोई दूसरा दे रहे हैं। तो जब तक मेरा ये निर्णय ही ना बदले, आप महामंत्र जाप करते भी रहोगे तो ईश्वर प्राप्ति कैसे हो जाएगी? ईश्वर किसी भी व्यक्ति को क्यों चाहिए? ईश्वर इसलिए तो चाहिए कि संसार में वो जान रहा है यहाँ मौत भी मुझको देखनी पड़ेगी, रोग भी मुझको देखना पड़ेगा, काम बिगड़ेंगे भी, दुनिया मुझको धोखा भी देगी। कहने का तात्पर्य यह है कि सांसारिक जीवन मैं कितनी भी अच्छी तरीके से क्यों ना व्यतीत कर लूँ, मेरे जीवन में कष्ट खत्म नहीं होंगे। जितना भी विज्ञान है अध्यात्म का वो आपको यही तो सिखा रहा है, जो संसार में भोगवादी जीवन है अर्थात इंद्रिय भोगों को भोग कर, इंद्रियों के द्वारा कर्म करके मैं जो संसारी जीवन व्यतीत करता हूँ, ये जीवन जो है कभी भी मनुष्य को सुखी नहीं कर सकता। ये सत्पुरुषों का फाइनल निर्णय है। नहीं तो वैदिक काल में देखो जरा कितना पुराना काल है, वहां से निर्णय आ रहा है, दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तयेत। मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है, इसीलिए जीने की डायरेक्शन क्या दे रहे हैं वो, काम भोगान निवर्तयेत, इसलिए कामनाओं और भोगों से निवृत्ति प्राप्त करो। ये है वे ऑफ लाइफ। अब बताइए इस निर्णय को हम ही में से कितने स्वीकार करते हैं, या जो भी महामंत्र का जाप करता है इस निर्णय को क्या स्वीकार करता है वो? तो सफलता कहां से मिल जाएगी आपको? 50 साल महामंत्र का जाप करते रहना सफलता नहीं मिलने वाली, क्योंकि निर्णय आपको दुरुस्त नहीं हुआ है। इसलिए महाजी कहते हैं प्रेमी बिना सत विचार के अध्यात्म मार्ग तय नहीं हो सकता। तो ह्यूमन वे ऑफ लाइफ ये है कि कामना और भोगों से निवृत्ति के मार्ग पर चलना है मैंने, और संसार के मार्ग ये कामना और भोगों में सफलता प्राप्ति के लिए, अर्थात ज्यादा से ज्यादा मेरी कामनाएं और भोग मेरे पूरे हो जाएं, इस गोल को लेकर मैं संसार में हाथ पर फैलाता हूं। और वही ट्रेनिंग अपने परिवार को देता हूँ, अपने समाज को देता हूँ। तो दो उल्टे मार्ग हो गए, नहीं हो गए, एक टग ऑफ वार हो गए। एक तरह संसार फैलाया जा रहा हो, इतना फैला लिया है कि आप कहते हो मैं तो मजबूर हूं क्या करूं, अब तो टाइम निकाल ही नहीं सकता। तो ऐसी हालत में महामंत्र क्या करेगा आपका बताओ। तो ये गुरु उसके लिए बात कह रहा है जिसने ये बात समझ ली है कि संसार में यदि मैंने टाइम खर्च किया अपनी आयु का और ईश्वर प्राप्ति की तैयारी नहीं की, वो मेरा लक्ष्य ही नहीं बन पाया, तो ये मेरे पूरे जीवन की विफलता है। क्योंकि सफल जीवन संसारी किसको कहते हैं, सुख प्राप्ति को कहते हैं सफल जीवन, और वो संसार में हो ही नहीं सकता। आप यदि सफल जीवन की कल्पना करते हो गए तो दो ही लोगों के सफल जीवन की कल्पना करते हो गए, या तो बहुत बड़ी हाई पोस्ट पे आदमी कोई हो दुनिया में, भाई दो ही तरह से पैसा कमाते हैं, या तो सर्विस करके या बिजनेस करके। बहुत बड़ा कोई ऑफिसर हो, किसी बड़ी कंपनी का सीईओ हो, आप हो गए इसका सफल जीवन होता है, इतना बड़ा आदमी है। या फिर बहुत बड़ा बिजनेसमैन कोई हो, बड़ी इंडस्ट्री हो किसी की, या बड़ा बहुत बड़ा जो है वो जैसे अमेजॉन जैसी कंपनी का मालिक हो, तो हमारे मन में कल्पना है कि ये सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हो। लेकिन उस स्थिति में पहुंचे हुए व्यक्ति से कभी बात करने का मौका मिले, या आपकी बुद्धि इतनी है तो उसकी मानसिक हालत आप विचार कर सकते हो कि कितने तनाव होते होंगे, कितनी प्लानिंग करनी पड़ती होगी, कितने लोगों को हैंडल करना पड़ता होगा। और हर व्यक्ति आज जानते हो कि भय में ही काम करना जानता है, स्वतंत्र रूप में छोड़ दिए वो गड़बड़ करना शुरू कर देगा। हर व्यक्ति को आपको कंट्रोल करना पड़ता है स्ट्रेटेजीज के द्वारा। हर व्यक्ति जानता है, जो 1000 लोगों का कमांडर है, 100 लोगों का को कमांड कर रहा है, या 1,00,000 लोगों को कमांड कर रहा है, वो जानता है कि आपको ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ती है कि लोग बेईमानी ना कर पाए, बेईमानी करे तो डर हो कि डंडा ऊपर पड़ेगा मेरे ऊपर, समझे नहीं, तब जाके आपका काम चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी और बिजनेस का भी। तो उस व्यक्ति को इन लोगों के लिए कितना सोचना पड़ता होगा। तो 24 घंटे आपके विचार तो संसार का चल रहा है, फिर आप कहते हो कि महामंत्र में 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम जाप कर लूंगा, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, महामंत्र सब कुछ कर देगा मेरे लिए। तो महामंत्र का प्रभाव आपके मन के ऊपर ज्यादा पड़ेगा या इस सोच का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा आपको, साधारण रूप में विचार करके देखिए। तो इसलिए ये काम ऐसे हो ही नहीं सकता। हम लोग ऐसे ही हैं, यानी संसार के लोग ज्यादातर ऐसे ही हैं, इसीलिए नकली गुरु भी मिल जाते हैं फिर इनको। नकली गुरु जानते हैं ये छोड़ना तो है नहीं, इसे ईश्वर इसको चाहिए नहीं, संसार में मैं विफल ना हो जाऊं इस भय से गुरु के पास जाते हैं, वो भी आशीर्वाद देता है तेरे सारे काम सफल हो जाएंगे। बस तू मेरा ये बात, मेरा ये कहना मान ले, ये साधना कर ले, या इतनी सेवा कर दे, जो भी उसके फागुन के फॉर्मूले होते हैं, हम उसमें फंसे रहते हैं। लेकिन यदि सत्पुरुषों की बात करोगे तो रास्ते दो ही हैं। महर्षि रमण ने भी कहा दो ही रास्ते हैं, या आत्मा की खोज, जिसे वो कहते थे मैं कौन हूं इसको जानना, या कहते हैं समर्पण, तू करता तू हरता सब तेरी आगे। तो महाराज जी ने समर्पण के रास्ते को ही बताया है जिसपे ज्यादा से ज्यादा लोग चल सकते हैं, और वो कहता है ज्ञान योग का रास्ता, उस पर कोई कोई चल पाता है, इसलिए बड़ी पात्रता चाहिए। तो वो तो आम व्यक्ति का रास्ता हो नहीं सकता, इसलिए सत्पुरुष उसी रास्ते को बताते हैं जिसपे आम व्यक्ति चल सकता है। तो वो क्या है? मंत्र जाप का रास्ता। मंत्र जाप भी दो तरीके से होते हैं जो सारे शास्त्रों में आते हैं। एक होता है श्वास के साथ जाप करना, जिसको योग मार्ग बोलते हैं या राजयोग भी बोलते हैं। एक होता है मौन होकर सिद्ध मंत्र का जाप करना। सिद्ध मंत्र किसे कहते हैं? जो मंत्र किसी गुरु ने प्रकट किया हो और जिसकी परमिशन जाप की आपको दी हुई, उसमें महामंत्र आता है क्योंकि इसकी वाणी में ही परमिशन दी हुई है, कोई भी इसका जाप कर सकता है। और श्वास के मंत्र के साथ वाणी ने परमिशन नहीं दी हुई है, तो महाराज जी कहते थे प्रेमी गुरु खुद यदि शिष्य को इस योग मार्ग पर डाले तब वो इस योग मार्ग पर चलने का अधिकारी होता है। तो हम अपनी कल्पना से कुछ भी करते रहें, लेकिन जो गुरु की बात होती है सीखनी हमने वही पढ़ती है, क्योंकि गुरु मनुष्य नहीं है, गुरु ईश्वर है। और जिस ईश्वर को प्राप्त करने हम चले हैं उस ईश्वर की बात का ही उल्लंघन कर दें तो हम पहुंचेंगे कहां? समर्पण कहां हो पाएगा फिर आपका? इसीलिए समर्पण का रास्ता है ये। और समर्पण का मतलब ये होता है कि मैंने गुरु के आगे या ईश्वर के आगे समर्पण किया है। क्यों समर्पण किया है? कि मैं उसके द्वारा अपना कल्याण चाहता हूं, इसलिए समर्पण किया है। जब उसके द्वारा मैं कल्याण चाहता हूं तो अब जो कुछ भी उसने मुझको इस मार्ग पर चलने के लिए डायरेक्शन दी है वो डायरेक्शन मुझको फॉलो करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। तो महाजी ने कहा कि प्रेमी ये मन जो है संसारी भोगों की प्राप्ति में उनको भोगने में ये चंचलता इसकी बनी रहती है, ये मन बाहर को दौड़ता है। पैसा कमाने या कोई चीज नहीं होती है, हर व्यक्ति जानता है कि पैसा इसलिए कमाया जाता है कि उससे भोग की प्राप्ति हो, ये तो है। तो भोगों की प्राप्ति हमारा लक्ष्य होता है, उसी के लिए हम पढ़ते हैं, उसी के लिए हम रोजगार करते हैं, उसी के लिए हम काम करते हैं, और हम सोचते हैं कि मन हमारा संतुष्ट हो जाए। सत्पुरुष उल्टी डायरेक्शन बता रहे हैं कि मन का संतोष अंदर है, बाहर है ही नहीं। मन यदि कभी भी किसी का संतुष्ट हुआ तो वो ईश्वर बोध जब अंदर उसको होगा तभी उसको शांति मिलेगी, बाहर वो चीज है ही नहीं। इसलिए जब तक आप इस विज्ञान को समझोगे नहीं तब तक आपके अंदर बाहर जो ये भोग वृत्ति है इसमें वैराग्य भाव कैसे आएगा? जो चीज खाने से आपको लूज मोशंस होते हैं तो आप उस चीज को खाने से डरते हो नहीं डरते हो, या उसको छोड़ने की कोशिश करते हो नहीं करते हो? और साथ में वो बंद हो जाए इसलिए मेडिसिन का भी सेवन करते हो। तो मन की चंचलता बंद हो जाए उसके लिए जाप है, मंत्र का जाप है, ये मेडिसिन है। और बाहर जो आपने संसारी जीवन फैला रखा है तो ये आपकी जिंदगी का नाश कर रही है। तो इस संसारी जीवन को आप सिकोड़ोगे या नहीं सिकोड़ोगे, या ये कह के छूट जाओगे मैं तो फंस गया साहब, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, इतना आगे बढ़ चुका हूं मैं आप पीछे नहीं लौट सकता। कोई कोई गुरु आपका क्या कर लेगा बताओ? ईश्वर क्या कर लेगा आपका? महाजी ने कहा नहीं, साक्षात ब्रह्मा भी आ जाए जब तक तू खुद सोचेगा समझेगा मानेगा और चलेगा नहीं तेरा कुछ नहीं बन सकता। गुरु ने कहा या नहीं कहा? तो इसीलिए सबसे सिंपल बात गुरु की और जो सबसे आसान बात है करने में वो है सादगी। सादगी का मतलब होता है कि मर्यादा में कमाना मर्यादा में खर्च करने की कोशिश करना और मर्यादा में ही संसार के पदार्थों का सेवन करना या भोग करना, इसको कहते हैं गुजरान वाला प्रोग्राम। इसकी भी हम बड़ी बड़ी लंबी लाइन लगा सकते हैं भोगों की। कहते हैं ये सादगी है, आजकल के जमाने के साथ सादगी है, लेकिन यदि आप ईमानदारी से सोचोगे तो आपकी चालाकी चलेगी नहीं कभी। सादगी का मतलब ही ये होता है कि देह की रक्षा के लिए जीना, बाहरी रूप में देह की रक्षा का, देह स्वस्थ रहे आपकी और एक नॉर्मल लाइफ होती है समझे, वो आपने जीना है। क्यों जीना है? क्योंकि आपकी बुद्धि इस निर्णय पर पहुंच चुकी है कि सांसारिक जीवन जो है इसमें जितना अधिक से अधिक टाइम मैं लगाऊंगा, मन के द्वारा जितना अधिक मैं संसारिक पैसा कमाने, संसारिक भोगने के लिए जितनी ज्यादा मैं तैयारी करूंगा, उतनी ही बेचैनी मेरे जीवन में बढ़ जाएगी। तो मैंने अंदर ईश्वर की खोज करनी है। ईश्वर शांत रूप है, ईश्वर आनंद रूप है, ईश्वर जीवन रूप है, और यही तीन चीजें चाहिए। मुझे सदैव का जीवन चाहिए, डेथ नहीं चाहिए, बेचैनी नहीं चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। जो चीज संसार में है ही नहीं वो ईश्वर में। यदि आपने इस बात को सीख लिया है या स्वीकार कर लिया है तो आपका जो सांसारिक जीवन है वो सादा होगा ही। और इसके साथ जब आप सिमरन करोगे, वो भी माजी कहते हैं प्रेमी प्रॉपर टाइम पर और नियम बना के, क्योंकि अभी तो तेरा नियम ही कोई नहीं है। जैसे बच्चे होते नहीं, बड़ों का तो फिर भी नियम बन जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। बच्चों को तो फिक्र नहीं होती है, वो कभी भी कुछ भी खाते रहते। माता पिता को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो मानते नहीं क्योंकि समझ नहीं उनके अंदर। तो हम में से जो भी समझदार है वो अपना खाना पीना सोना कमाना हर सबका नियम बनाएगा। फिर वो महाजी पूछेंगे प्रेमी समय से व्यापार किया कर, तो ये नहीं कहेगा महाजी क्या करूं, ग्राहक को धक्का कैसे दे सकता हूं मैं, नहीं नहीं वो तो रात तक जमा रहता है। तो जिंदगी को धक्का देने को तैयार है, नाले में फेंकने को तैयार है, ग्राहक को धक्का नहीं दे सकता था। तेरी बुद्धि की चालाकी। गुरु तो साफ कह रहा है तूने 8 घंटे यदि पैसा कमाया तो 8 घंटे ही कमाना है, साफ बोल लगा दे, इसके बाद ये दुकान नहीं खुलने वाली। तू दुनिया की नकल कर रहा है कि सब तो कमा रहे हैं, अंदर से भयभीत हो रहा है कि मेरा क्या होगा, मेरी दुकान फेल हो गई तो क्या होगा। तो इसीलिए आपके अंदर ईश्वर के प्रति समर्पण होना ही चाहिए। और समर्पण में ही तो ये रास्ता आता है कि तुझको देने वाला, तुझको जीवित रखने वाला ईश्वर है, और तेरे प्रार्थ के अनुसार तेरे जीवन में सुख भी आएंगे, तेरे जीवन में दुख भी आएंगे, तेरे काम बनेंगे भी, तेरे काम बिगड़ेंगे भी, लेकिन वो सब ईश्वर के हुक्म के अंतर्गत होगा। जब तक तू अपने मन के अंतर्गत समझ रहा है, लोगों को उसका कारणकर्ता समझ रहा है, तो भयभीत रहेगा ही। तेरे में ईश्वर विश्वास ही कहा है। हर चीज तो गुरु ने प्रकट की है, जो हो ना सो हो रहा प्रभु की आज्ञा माए, प्रकट किए नहीं किए, लेकिन जिस तरह का जीवन मेरा चल रहा है, मैं ये बात कभी पालन कर सकता हूं? कभी नहीं हूं, क्योंकि मन में भय रहेगा कि दुनिया तो ऐसे नहीं चलती। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने सोच के तरीके और करने के तरीके संसारिक बनाए रखते हैं, उसके साथ हम ये बात कर देते हैं कि मन हमको ईश्वर प्राप्ति करा देगा। कैसे हो जाएगा? ईश्वर प्राप्ति उसी को तो होगी जिसके जीवन का लक्ष्य ईश्वर है। जो इस बात को समझ चुका है कि यदि ईश्वर के मार्ग पर नहीं चला तो मेरे जीवन के दुख कभी भी खत्म नहीं होंगे। और इतना ही नहीं, ये जीवन तो जाएगा ही जाएगा, अगला जीवन भी जाएगा, हमें उसकी भी फिक्र नहीं। आप खुद देखो, आपको अगले जीवन की फिक्र है क्या? ये कहते हैं अगला जीवन देखा जाए, किसने देखा? ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इतना सत्संग सुनने के बाद भी ये निश्चय हमारे अंदर से हटता ही नहीं है कि मैं देह नहीं हूं, मैं जीव हूं जिसमें होश है, जो सुख और दुख महसूस करता है, जो बेचैनी महसूस करता है। मैं बेचैन होता हूं, नहीं होता हूं? तो मैं इस देह का भी मालिक हूं, मैं इस मन का भी मालिक हूं, लेकिन मैं इन दोनों का मालिक हूं। मैं ये नहीं हूं। तो सारे शास्त्र साफ साफ निर्णय दे रहे हैं कि ये जो जीव है, जो मन देह का मालिक है, इसकी मृत्यु नहीं है। और गीता साफ साफ कह रही है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण कर लेता है, उसी प्रकार जीव पुरानी देह त्याग कर नई देह धारण कर लेता है। तो देह में दोनों चीज शामिल होती हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। मन हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो आंख से दिखाई पड़ रही है, ये देह स्थूल शरीर है, ये है शरीर, ये दोनों का काम है। तो जैसा आपका सूक्ष्म शरीर होता है, उसी के अनुसार आपकी नई देह तैयार हो जाती है। तो सारे संस्कार, सारे कर्म फल, सब कुछ आपके मन के अंदर सुरक्षित रहता है, उसी के अनुसार, ईश्वर के विधान के अनुसार नई देह आपकी तैयार हो जाती है। तो वर्तमान जन्म भी गया आपका, यदि अज्ञानता के साथ व्यतीत किया तो अगला जन्म भी गया आपका। और इतना बड़ा नुकसान भी हो सकता है कि मनुष्य देह ही ना मिले आपको, तो करनी आपके ही नहीं है। ईश्वर भी सोचेगा कि मनुष्य देह तो इसलिए दी गई कि ये इन दुखों से मुक्त होकर मुझको प्राप्त कर सके, और तूने उसकी जरूरत ही नहीं समझी, तो फिर तू मनुष्य जन्म का अधिकारी कहां से हो गया? तुझे किस वास्ते चाहिए? भोग तो तू किसी भी नहीं भोग सकता, कुत्ता बनकर भी भोग सकता है, बिल्ली बनकर भी भोग सकता है, पशु पक्षी कितने बड़े भोग भोग रहे हैं। तो इसीलिए हम देखें सारे निश्चय को अपने, कितने गहरी अज्ञानता लेकर हम ईश्वर का स्मरण करते हैं, कितनी गहरी अज्ञानता लेकर, हमको होश ही कोई नहीं। तो ये सारे विचार की जरूरत है, पूरी समता विलास ये है आपके लिए विचार, सत विचार है ये। पूरी जिंदगी ये पुस्तक पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सब निर्णय दिए हुए ना, सारे सिद्धांत दिए हुए हैं, और सारा परहेज भी दिया हुआ है, और कुछ और महाराज ने मदद की है कि कैसे करोगे वो भी दिया हुआ है, इसमें डिटेल्स भी दी हुई है। ऐसा शास्त्र कभी रचना हुई नहीं दुनिया में, मैंने तो कहीं पढ़ा है, इतनी डिटेल्स कहीं दी हो, इतनी मदद किसी गुरु ने शिष्य की हो लिखित रूप में, मैंने तो कहीं पढ़ा। गीता बड़ी फेमस बुक है सारी दुनिया में, क्या दिया हुआ है इसमें पढ़ के देखो, कोई डिटेल्स है इसमें? तभी मैं ये कहता हूं बड़ी कठिन है साहब, समझ नहीं आते। सोचो मेरा शौक ही नहीं, मैं उस पर ये एडजेक्टिव इसलिए लगा देता हूं, मैं शौक ही नहीं। बड़ी कठिन किताब है कहकर छुट्टी मिल गई, पढ़ने से भी छुट्टी मिल गई, समझने से भी छुट्टी मिल गई, फिर करने से भी छुट्टी मिल गई। तो बात सब पुरुषों की बिल्कुल ठीक है, आप यदि बाहर परहेज कर रहे हो, सादगी का जीवन जी रहे हो, सादगी का जीवन जीने का मतलब ही है कि आपने इस बात को समझ लिया है कि भोगों की वृद्धि का मतलब है कि मन की चंचलता को बढ़ाना, और मन की चंचलता को बढ़ाने का मतलब है कि सिमरन में पूरी तरह फेल होना। जब आप प्रयास ही मन की चंचलता को बढ़ाने का कर रहे हो संसारी जीवन में, तो थोड़ी देर के लिए आप माम का जाप कर रहे हो, क्या असर होना मामन का? तो जब आपके अंदर विवेक बुद्धि में आता है, बुद्धि विवेकवान होती है, तब बुद्धि में वैराग्य का भाव भी जरूर आता है। ये दोनों चीज साथ आती है, अर्थात भोग के प्रति जो अट्रैक्शन था मन के अंदर, वो अट्रैक्शन आपका कमजोर पड़ जाता है। और एक दूसरी चीज पैदा होती है आपके अंदर कि इतनी आदतें मेरी बिगड़ गई हैं, संभालने में इनको बड़ी शक्ति लगानी पड़ती है। जैसे कोई ड्रिंक की आदत डाल ले, साधारण रूप जानते हो, आदत तो पड़ गई, साथी ऐसे मिल गए कि आपने आदत डाल दी, लेकिन उसका छोड़ना कितना कठिन है। जो भी छोड़ता है वो जानता है कि कितना कठिन काम, कैसे बार बार ये खींच। लोग ऐसे ऐसे मिलते हैं कि जो 10-10 साल पीते रहते हैं, उसके बाद साल साल भर नहीं पीते हैं, लगातार नहीं पीते हैं, लेकिन साल भर बार फिर जोर मार देती हो, खतरा बना रहता है, कभी भी शुरू हो जाएगी इसकी, संस्कार ऐसे बन गए। तो जो दोष है हमारे, जो संसार में हमने अपने अंदर भोग के बना लिए, तो उन दोषों से मुक्ति पानी पड़ेगी आपको या नहीं पानी पड़ेगी? ड्रिंक करने की आदत है मान लिया, तो महामंत्र जाप यदि करके ईश्वर प्राप्त करना चाहते हो, तो ड्रिंक आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ड्रिंक करती क्या है कि बुद्धि को गफलत में ले जाती है, और सिमरन क्या करता है, बुद्धि को होश में लाती है। तो जो चीज बुद्धि को गफलत में ले जा रही है, बेहोशी में ले जा रही है, वो छोड़ना कंपल्सरी होगा या नहीं होगा? तो इसीलिए जो सादा जीवन है वो कंपल्सरी है, जिसने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलना पड़ा है उसके लिए चॉइस नहीं है। ठीक है, किसी का जन्म महल के अंदर हो जाए, महल में दुनिया के भोग विलास मौजूद है, लेकिन जिसने उस मार्ग पर चलना है, भोग विलास के बीच में पलते हुए भी वो मन से सादा ही होगा, उसकी रुचि नहीं होगी चीजों में, उनके बीच में पल रहा है, वो रह रहा है, तब भी उसकी किसी चीज में रुचि नहीं होगी, क्योंकि उसकी बुद्धि में विवेक होगा ना। ये रास्ता विवेक के बल पर ही तय होता है, और ये विवेक किसी को तो इस जन्म में अर्न करना पड़ता है, और कोई ऐसे भी होते हैं जो बचपन से इस विवेक को लेकर ही पैदा हुए हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि ये जन्म तो नया हो ना आपका, कोई लाइफ स्टाइल की कंटिन्यूस है ना। तो मन आपका जो पिछले जन्म में यदि बूढ़े हुए आप मनुष्य जन्म था आपका, और उसमें आपने मेहनत करके ये विवेक हासिल किया था और ईश्वर के रास्ते पे चले थे, तो ये सारे संस्कार आपके मन में मौजूद रहेंगे नहीं रहेंगे? मन वही है, तो वो तो आपको रेडीमेड मिलेगा बचपन से। आप देखते हो नहीं, तो कुछ बच्चे बड़े ब्रिलियंट पैदा होते हैं, पैदाइशी ब्रिलियंट है, वो जीनियस है। कुछ बच्चे मूर्ख पैदा होते हैं कि पढ़ाते पढ़ाते थक जाओगे, सीखने की कैपेसिटी नहीं होती। तो ये डिफरेंस कहाँ है? ये डिफरेंस मन का ही है। इसलिए एक बार किसी ने कहा महर्षि रमण से, महर्षि ब्रेन से मन तैयार होता है, जैसा ब्रेन होगा वैसे मन तैयार होगा। महर्षि रमण क्या कहते हैं, सब पुरुषों की बातें हैं, वो कहते हैं मन से ब्रेन तैयार होता है। तो कैसा ब्रेन लेके पैदा होगा, ये तेरा मन तैयार करेगा। महाजी का कैसा मन था, स्कूल में जो चीज एक बार सुन ली उन्होंने कभी भूलते ही नहीं थे, टॉपर थे स्कूल के, इसीलिए वो पढ़ाई की क्या सुविधाएं थी इनको। उन्हीं का हेडमास्टर अपने ही स्टूडेंट से कहता था कि भी एग्जाम आ रहे हैं, तुम एक्स्ट्रा क्लास ले लो। वही विद्यार्थी जिसने खुद एग्जाम देना है वो एक्स्ट्रा क्लास लेकर बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ये ब्रेन किसने तैयार किया है? ये मन ने ही तो तैयार किया। तो जो पूर्व जन्म में जिस मन का शोधन किया राइट डायरेक्शन में पुरुषार्थ करके, तो मन तो वही आया ना। तो जीव भी वही है, मन भी उसका वही है। तो अच्छा मन जब तैयार किया है तो अच्छी देह मिलेगी नहीं मिलेगी? अच्छी देह में अच्छी बुद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी? तो वैसे ही आप करनी होगी। तो बचपन से ही महाजी ने कोई समय खोया क्या पैसा कमाने में, दुनिया के कर्म करने में? उनको प्रारब्ध भी वैसे ही मिला और पुरुषार्थ भी वैसे ही किया। और ईश्वर प्राप्ति करके हम लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुए नहीं होगा? ये आज हम लोग यहां बैठे हुए हैं, ये बातें कर रहे हैं, तो उन्हीं के कारण तो कर रहे हैं। तो कितने लोगों का उन्होंने कल्याण कर लिया, मैं क्या कर लूंगा बताओ मुझे? मैं जो कमाई करे जा रहा हूं दुनिया में क्या कर लूंगा? चार बच्चों को बिगाड़ कर चले जाऊंगा दुनिया से मैं? कल्याण तो बात ही छोड़ दो, मैं अपनी ही संतान को अपनी ही करने से बिगाड़ के चले जाऊंगा दुनिया से। तो बताइए ईश्वर आपको क्या देगा? मरते वक्त ईश्वर आपको क्या देगा? तो ये मनुष्य जन्म नकल करके बातें बनाने बना करके इस ईश्वर के रास्ते पे चलने से छुट्टी पाने वाला चक्कर नहीं है ये। तो मैं तो बहाने बनाता हूँ ना, फिर ईश्वर की भक्ति के रास्ते पे चलने से छुट्टी पा लेता हूँ। कहता मैं तो कर ही सकता, ये तो कोई कोई कर सकता है जिसमें वक्त होता है। अरे वक्त तो सब पे 24 घंटे का ही होता है। कोई दुनिया में ऐसा मनुष्य आज से पैदा नहीं हुआ जिसपे किसी पे 25 घंटे का वक्त हो, किसी पे 23 घंटे का वक्त हो, सब पे 24 घंटे का वक्त होता है। तू किसमें कल्याण अपना समझ रहा है तो उस रास्ते में वक्त को खर्च कर रहा है, सीधी सी बात है। तो जिस दिन भी मैंने सही रास्ते पे चलना है उसी दिन से मेरा निर्णय बदलेगा ही। और निर्णय बदलने का मतलब है कि ईश्वर भक्ति के द्वारा मेरे जीवन की सफलता है, ये तेरा निर्णय जब हो जाएगा तभी तो गंभीरता से उस रास्ते पर चलने वाला बनेगा। नहीं तो सारा नुकसान तो यही सोचेगा कि अरे मैं इतनी पढ़ाई और कर लेता, इतनी मेहनत और कर लेता तो इतना पैसा कमा लेता, इसकी एजेंसी और ले लेता, ये और जरा मेहनत कर लेता, इतना बड़ा कारोबार कर लेता मैं, यही सोचता रहेगा। तो जिसने इस बात को समझ लिया कि मनुष्य जन्म ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है, और ईश्वर प्राप्ति का ही दूसरा मतलब है कि सारे दुखों से मुक्त होने के लिए मिला है, और ईश्वर प्राप्ति कुछ भी नहीं है, जितने प्रकार के भी दुख हो सकते हैं सारे दुखों से 100% मुक्त होने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। और इसी को वाणी कह रही है कि मानुष जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता चित्त आए, प्रभु के सिमरन कारने ये दुर्लभ जीवन पाए। ये दुर्लभ जीवन इसलिए है कि मनुष्य जन्म में ही ये काम हो सकता है। मनुष्य अपने दुखों का इलाज मनुष्य जन्म में ही कर सकता है, और किसी जन्म में वो कर ही नहीं सकता क्योंकि वहां बुद्धि है ही नहीं, समझने की स्वतंत्रता ही नहीं है, मन के अधीन जीवन है। सारे पशु पक्षी जितने भी हैं जीव जंतु इंस्टिंक्ट के हिसाब से जीते हैं। तो मेरे अंदर ये स्वतंत्रता है कि मैं सत्पुरुषों की बात के अनुसार जीवन व्यतीत करूं या लोगों के कहने के अनुसार जीवन व्यतीत करें। तो जब आपकी बुद्धि का ये निर्णय हो जाता है, और जिसने भी गुरु धारण किया है उसका निर्णय होना चाहिए, मैं काहे को गुरु बनाया फिर, तो वो फिर महाराज जी के कहने के अनुसार जैसा कि लिखित में महाराज जी ने दिया, और कहीं ये प्रोग्राम नहीं मिलता लिखित कि 15 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक 1 घंटे सुबह 1 घंटे सायकाल सिमरन करना लाजमी है, और 30 से 40 वर्ष की आयु तक 1.5 घंटा सुबह 1.5 घंटे सायकाल सिमरन करना लाजमी है, और ये आयु के साथ बढ़ता जा रहा है। तो यदि मैंने ईश्वर प्राप्ति करनी है तो सबसे ज्यादा एम्फेसिस, सबसे ज्यादा जोर जो है मुझको ईश्वर मार्ग का जो प्रोग्राम है उस पर देना पड़ेगा। उसके साथ मैंने सोचना है कि दो वक्त की रोटी मैं कैसे खाऊंगा, यदि परिवार की जिम्मेदारी है तो उसको कैसे पालूंगा, क्योंकि संसारी निकल करके नहीं, मैंने गुरु के मार्गदर्शन अनुसार परिवार को पालने की भी सोचनी है। और मां जी कहते थे, प्रेमी तू फिक्र मत कर, ईश्वर व्यवस्था कर दे। क्योंकि सारे ऋषि जानते हैं कि जो भी जीव संसार में आया है, चाहे किसी भी गृहस्थ में आया है, कोई भी मनुष्य, वो प्रारब्ध लेकर पैदा हुआ है। ऊपर से तो मैं उसका मालिक बन जाता हूं, क्योंकि मेरे अंदर वो आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स और फेथ नहीं है मेरे अंदर। लेकिन यदि मेरे अंदर फेथ है तो मेरे अंदर हमेशा ये बात बनी रहती है कि इस बच्चे का मालिक मैं नहीं हूं, इस बच्चे का मालिक प्रभु स्वयं है और वो इसके अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी से हटता नहीं, पालन करता हूं पूरी, लेकिन वही मर्यादा की बात करके। तो ऐसा मनुष्य ईश्वर मार्ग पर चल सकता है, चाहे वो गृहस्थ जीवन में है, चाहे वो सन्यास जीवन में। और ऐसा व्यक्ति जब सिमरन करेगा, महामंत्र का जाप करेगा, तो उसके अंदर ईश्वर प्रायणता हर समय बनी रहेगी। वो तो जानता है अंदर से कि प्रभु कारण करता तू, तूने जिसको दुख देना है, जिसको सुख देना है, उसकी व्यवस्था तो दुख देने की भी कर देगा, सुख देने की भी कर देगा। मैं कर्तव्य भाव से अपनी समय सीमा बांध के, अपना टाइम टेबल बनाकर, मैंने अपना पुरुषार्थ अध्यात्म मार्ग का भी करते रहना है और संसारी मार्ग का भी करते रहना। तो एक निश्चित प्रोग्राम बनाकर दुनिया कितनी भी ताने मारे, कुछ करे, वो अपने प्रोग्राम पे चलता रहता। तो ऐसा व्यक्ति जब महामंत्र जाप करेगा तो जैसा वो कह रहे हैं कि सत मंत्र सिमरन करे, ये सत मंत्र है, अर्थात ये मंत्र, सत कहते हैं ईश्वर को, सत उसे कहते हैं जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है, और केवल ईश्वर ऐसी सत्ता है जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है। सत मंत्र का मतलब हुआ ये सत मंत्र, तत्व मंत्र कहने वाणी में आया नहीं है, तो ये तत्व रूप है या सत रूप है, ये खुद ईश्वर रूप है। नाम ब्रह्मेति उपास्ते, नाम को ब्रह्म जानकर उपासना करनी चाहिए, सारे शास्त्र कह रहे हैं। मंत्रो हम गीता में कहा गया, मैं मंत्र हूं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो ईश्वर हमारे कल्याण के लिए मंत्र रूप में अवतार लेता है, क्योंकि मैं ईश्वर की पूजा करूंगा कैसे, या तो मैं मूर्ति बनाऊंगा फिर उसकी, मूर्ति की उपासना करोगे तो मूर्ति में तो इंद्रियों का उपयोग होगा ना, आंख से देखोगे उसको, हाथों से कुछ क्रिया करोगे उसके लिए, तो वृत् ति आके बाहर जाएगी नहीं जाएगी, ईश्वर प्राप्ति अंदर होती है। इसलिए जो पूर्ण ऋषि है वो हमेशा आपको अंदर की उपासना में डालेगा। तो अंदर किसकी उपासना करोगे, ईश्वर तो अंदर है, मुझे अभी पता है अंदर है, लेकिन मेरा कोई संबंध है उससे? ईश्वर होते हुए मैं सारे पाप कर रहा हूं, कोई भय नहीं है ईश्वर का? इसीलिए वो कहता है कि अपना जीवन शुद्ध करो, नहीं संयमित करो, और उस संयम के साथ फिर जब प्रभु उपासना करने बैठो तो मंत्र के प्रति ईश्वर भाव बनाकर कि मेरा और ईश्वर का मिलन हो रहा है, मिलन का वक्त है। तो आप प्रेम से जब उसकी याद करते हो तो मां जी कहते हैं सिद्ध मंत्र के जाप से जन्म जन्मांतर के संस्कार भस्म हो जाते हैं। मुझको पता नहीं कितने जन्मों के क्या क्या संस्कार मन के अंदर, लेकिन ये मंत्र शक्ति है कि वो इस संस्कार को भस्म करेगा। और ये संस्कार जब शुद्ध होते हैं तब मेरे जो ये प्राणों की गति है ना, ये विषम गति जो होती है, जो योग मार्ग में प्राण पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस जप मार्ग में प्राण पर ध्यान नहीं दिया जाता, ये ऑटोमेटिकली मंत्र शक्ति से प्राणों का संयम ऑटोमेटिकली होता है। तो कहते हैं मन की चंचलता से प्राण चंचल होते हैं, प्राणों की चंचलता से मन चंचल होता है। तो मन जब आपका शांत हो रहा है मंत्र के जाप से, तो प्राण का संयम ऑटोमेटिकली होगा नहीं होगा। तो जो प्राणापान है, प्राणों का अंदर जाना बाहर निकलना है, विषम गति से इनकी समगति ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये महामंत्र ही उसको सम करता है प्राणों को। तो जब प्राण जब सम होते हैं उस समय आपके अंदर वो शक्ति जागृत होती है जिसको कुंडलनी कहते हैं, नाभि चक्र का खुलना होता है। तो जो शक्ति मंत्र रूप में अवतरित हुई आपके आगे, ये खुद कुंडलनी शक्ति है। मंत्र ये क्या है? खुद कुंडलनी शक्ति है। इसलिए महर्षि रमण कह रहे हैं कि मंत्र गुरु कुंडलनी एक चीज है। महर्षि रमण ने कही ये बात, मंत्र गुरु कुंडलनी और आत्मा एक चीज है। तो ये जो मंत्र है खुद कुंडलनी रूप है, तो ये इस कुंडलनी शक्ति को जागृत करता है। तो वो जब कुंडलनी शक्ति स्टेबल हो जाती है, अर्थात हर समय आपके अनुभव में बनी रहती है, उस समय ये मंत्र उस कुंडलनी में ही लीन हो जाता है। वो आपकी फिर ध्यान की स्थिति बन जाती है। फिर कुंडलनी पे केवल ध्यान रहता है आपका, कोई सोचना नहीं पड़ता, हर वक्त लॉस में लगी रहती है। जब आंख बंद करके बैठेगा तो वैसे भी शांत हो जाएगा, उसकी धारा अंदर चल रही होगी। तो वो जिस स्रोत से आई है, दसवें द्वार से, वो आपको उसी द्वार में ले जाके आत्मा में स्थित कर देती है, मोक्ष को प्राप्त। तो बात ठीक है वो, लेकिन जहां से गुरु शुरू करने को कह रहा है वहां ही हमारा संयम नहीं है। जब आगे तो क्या होना है, तो सब कुछ गुरु के मार्गदर्शन नहीं करना, या यूं कह लें सब कुछ मंत्र नहीं करना है। लेकिन बात तो पूरी समझनी पड़ेगी ना, पूरी समता विलास आपके जीवन में उतरनी ही चाहिए, आप किसी से बच नहीं सकते। तो इस रूप में यदि हम इन टोटलिटी चीज को देखें तो महामंत्र आपको ईश्वर तक पहुंचा देता है। ओम ब्रह्म सत्यम।